कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते नृपेश गोपी का कांता राधा का तप्ता कंचन तोरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाना सुते देवी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यान श्री अद्वैत गदाधर सुभाषदि हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण एज यूजुअल क्वेश्चन
हरे कृष्ण बापू जी आपके श्री चरणों में प्रणाम बापू जी आपने कल की सत्संग के एंड में कहा कि हम कृष्ण को पहचानने में चूक जाते हैं तो बापू जी चूक जाना इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स चूक जाने के भी दो प्रकार है नंबर वन कि कृष्ण सामने होते हुए भी उनको न पहचानना जो हमने कल भक्त नरसिंह मेहता के चाचा के केस में देखा और नंबर टू कि कोई व्यक्ति हमारी मदद करे पर अपने स्वार्थ के लिए या कोई हिडन मोटिव से और हम उसे कृष्ण समझ बैठे तो ये हो गया कृष्ण को पहचानने में चूक कर जाना जो शायद माया भी हो सकती है तो बापू जी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वस्तु या एडवाइस या सलाह हम तक पहुंचाई जा रही है वो कृष्ण की ही भेजी हुई है और क्या कृष्ण हम तक सिर्फ अपने भक्तों द्वारा ही पहुंच सकते हैं क्योंकि एक डिवोटी तो हमेशा चाहेगा कि नॉन डिवोटी द्वारा मदद करे क्योंकि इससे दोनों डिवोटी इससे दोनों कृष्ण स्वयं और उनकी कोई डिवोटी वैष्णव को कष्ट ना उठाना पड़े तो आइडेंटिफाई कैसे करें और दूसरा किसके द्वारा मदद करते हैं या किसके द्वारा आते हैं
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन और बहुत सारी कंफ्यूजन्स को ये दूर कर सकता है ये सही बात है कि हमें कैसे पता पड़े कि जो हमारी हेल्प कर रहा है ये कौन है तो पहली बात याद रखो कि जो भगवान हमारी सहायता करता है वो निस्वार्थ होती है अगर कोई स्वार्थ रखकर हमारी सहायता करता है या हमारी सहायता के बदले कुछ वो मांगता है या हमारी सहायता के बदले उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है समझ लेना वो भगवान नहीं हो सकता और ऐसी सहायता से सावधान रहो बल्कि ऐसी सहायता न लो तो बेहतर होगा क्योंकि याद रखना मुसीबत थोड़ी देर की क्या बोला और एहसान उम्र भर का रह जाता है मुसीबत थोड़ी देर की लेकिन एहसान उम्र भर का रह जाता है लेकिन जब भगवान हमारी सहायता करता है तो पहली बात तो यह है कि उसमें स्वार्थ नहीं होता है कोई निस्वार्थ क्या निस्वार्थ उसकी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है और वो सहायता प्लानिंग के साथ नहीं होती है ऑल ऑफ सडन होती है और वो जो ऑल ऑफ सडन हमारी सहायता होती है जिसके बदले सहायता करने वाला कोई मांगता नहीं है कुछ इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है बल्कि वो तो करके चला जाता है समझ लेना वो भगवान था लेकिन जो करने के बाद या करने से पहले कुछ कंडीशन रखता है उसकी कंडीशन में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है, उसकी सेवा या हमारी सहायता में कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ है, वो कुछ हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है, तो समझ लेना फिर वो इंसान है। और ऐसे लोगों की सहायता न लेना बेहतर होगा, बेहतर होगा। जो भगवान है तो आलोप सडन आता है और कर चला भी जाता है और पता भी नहीं चलता कहां से आया और कहां चला गया, ये सबसे बड़ी फर्क है। दूसरा, जो हमारी सहायता करेगा उसके सहायता का माध्यम हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ लोग हमारी सहायता तो करते हैं लेकिन उसके बदले वो कुछ मांगते हैं जो जीवन को नरक कर देते हैं। ये भगवान नहीं हो सकता, ये शैतान होगा, याद रखना। ये राक्षस होगा, याद रखना। इसलिए ये मत समझना कि इसने मेरी सहायता की है तो ये भगवान है। पहले ये देखो कि उसने सहायता किस कंडीशन पे की है। कुछ लोग सहायता करके बार बार उसका एहसास भी जताते हैं, बार बार उस एहसान को भी जताते हैं। कुछ लोग सहायता इसलिए करते हैं कि हम उनके नीचे हमेशा अंडर प्रेशर रहें। इसलिए जब भगवान सहायता करता है, जैसे कि उदाहरण दूं, द्रौपदी की भगवान ने सहायता की, ऑल ऑफ सडन आए और करके चले गए, विदाउट एनी प्लानिंग था। ऐसे जब आप किसी घोर समस्या में हो, आप समझ लेना, किसी बहुत महा तकलीफ, बहुत बड़ी कष्ट, बहुत बड़ी आपदा में हो और कोई आके करके चला जाए और पता भी ना चले, वो भगवान है। लेकिन ऐसा ही कोई आए, कोई प्लानिंग से आए, फिर आपसे कोई एग्रीमेंट करे, कोई कंडीशन रखे और आप समझो ये तो भगवान है, चूंकि मेरी सहायता कर रहा है इसलिए इसकी हर कंडीशन मुझे माननी, क्योंकि ये तो भगवान, वो भगवान हो नहीं सकता। द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण आए और आकर करके चले गए, भक्त नरसिंह मेहता के आए और करके चले गए। समझे? इसलिए इस मामले में सावधान रहना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो, रावण आया किस वेश में? साधु के, ब्राह्मण के वेश में आया, एक महापुरुष के वेश में आया, और पूरा त्यागी, पांव में खड़ावे, जटाएं, गले में मालाएं, और मां सीता के पास आया। मां सीता ने कोई उनको दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक कंडीशन रखी। कौन सी कंडीशन थी? ये रेखा से बाहर आओ। आज मैं आपको बहुत समझने की क्लियर बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर देने का आनंद आता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा मर्म निकलता है। अब रावण ने मां सीता को कन्विंस करना आरंभ कर दिया, किसके लिए? इस रेखा से बाहर आओ, इस रेखा से बाहर आओ। और मां सीता रेखा का उल्लंघन करना नहीं चाहती, लेकिन रावण ने छोड़ा नहीं और क्या करने लगा, सतत उसको समझाता रहा माँ सीता को कि बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ इस रेखा से बाहर आओ। उस रेखा को क्या कहा जाता है? लक्ष्मण रेखा। और वो रेखा को रेखांत किसने किया था? लक्ष्मण जी ने किया था। इसके बाहर मत निकलना, इसके बाहर मत निकलना। और रावण जिद कर रहा था इसके बाहर आओ, रेखा का उल्लंघन करो। और अंत में मां सीता को कन्विंस कर लिया, किसके लिए? बाहर रेखा का उल्लंघन करवाया। और जैसा ही मां सीता ने रेखा का उल्लंघन किया, रावण ने अपहरण कर लिया। ऐसे यदि कोई भी कितना ही महापुरुष आपकी नजर में हो, कितना ही सज्जन आपकी नजर में हो, कितना ही आपकी सहायता करने वाला उद्दार हो, लेकिन यदि वो एक मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करवाए, समझना वो अच्छाई के रूप में बुराई है। मत मानना कहना, मत मानना कहना। मैं सबसे कह रहा हूं, चाहे वो आपको कन्विंस करे, मत मानना कहना। और वो रेखा किसने दी थी? लक्ष्मण, भगवान राम के भक्त ने। तो ऐसे हमारे जीवन में जो हमारे बड़ों ने, जैसे हमारे माता पिता है, जो उनके संस्कार हैं, हमारे हमारे गुरुजन हैं, उनके जो संस्कार हैं, और उन संस्कारों की एक मर्यादा की रेखा है, उस रेखा में आपको रहकर कोई आपकी मदद करे तो समझ लेना वो तो ईश्वर का रूप हो सकता है। लेकिन उन रेखाओं का उल्लंघन करके कोई मदद करे, समझ लेना वो फिर रावण है। मत मानना कहना। और ना ही ऐसी सहायता हमें चाहिए जो हमारी मर्यादाओं का उल्लंघन करा के हमारी सहायता करता हो। इंसान जब किसी की मदद करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है, लेकिन जब भगवान किसी की सहायता करता है तो उसका स्वार्थ नहीं होता। इसलिए चाहे कोई कितना सज्जन हो, कोई कितना महान हो, यदि आपके जीवन की मर्यादाओं की रेखा का उल्लंघन करा दे तो उसकी सहायता कभी मत लेना। लेकिन यदि कोई आपकी मर्यादाओं में रहकर, आपकी मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए आपकी कोई सहायता करे और निस्वार्थ और सहायता करके वो चला भी जाए, क्योंकि सहायता करके कुछ लोग खड़े हो जाते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ, ये भगवान नहीं हो सकता। तो रावण तो आया, लेकिन किस रूप में था? साधु के रूप में। बुराई आई किस रूप में? अच्छाई के रूप में आई। लेकिन अच्छाई के रूप में आकर उसने अपना परिचय दे दिया। और आप समझा रहा हूं, अच्छाई के रूप में बुराई आई, उसने अपना परिचय क्या किया कि मां सीता से उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करवाया, उस रेखा से बाहर निकाल दिया और अपहरण करके। जब तक मां सीता उस लक्ष्मण रेखा अर्थात उस मर्यादा की रेखा में रहती, रावण बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकता था, हाथ भी नहीं लगा सकता था। ऐसे आप लोग, खासकर स्त्रियों को कहता हूं, लड़कियों को कहता हूं, जब तक वो अपने कुल की, अपने बड़ों की, अपने गुरुजनों की मर्यादाओं में रह के, कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर कोई सहायता के नाम पर हेल्प के नाम पर आपसे आपकी मर्यादाओं का उल्लंघन करा दे, समझ लेना ये राक्षस तो हो सकता है, ईश्वर नहीं। आई समझ? और कुछ क्वेश्चन?
हरे कृष्ण। माधुरी लीला दासी का प्रणाम बापू जी। बापू जी, जब जीवन में उलझने आती है और कुछ समय बाद जैसे आपने समझाया समाधान तो होता ही है, और कहीं ना कहीं वो एक परीक्षा का भी समय होता है, और जब बाद में इस बात का एहसास हो कि कहीं हम परीक्षा में असफल रहे, कहीं जो गुरु महाराज और कृष्ण की जो एक्सपेक्टेशन होगी हमसे वो हम फुलफिल नहीं कर पाए, हमने उनको डिसअपॉइंट कर दिया, तो आगे फिर वो कभी हमसे उम्मीद नहीं रख पाएंगे।
देखो सुनो, सबसे पहली बात यह है कि गुरु महाराज और कृष्ण आपसे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं। गुरु महाराज और कृष्ण आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है, मन मना भव मत भक्तो। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो, और गुरु महाराज कृष्ण के भक्त हमें बनाते, दोनों का एक ही काम, वो कहते हैं बनो, ये है बनाते हैं, अर्थात ऑर्डर कृष्ण का है और मैन्युफैक्चर कौन करता है? गुरु महाराज। जैसे ऑर्डर देते हैं ना, तो उसको कहते हैं भाई ये बना दो, तो मैन्युफैक्चर करते हैं, और सेठ ऑर्डर देता है, तो हमारे सेठ ने ऑर्डर दिया मन मना भव मद भक्तो, अन्य और किसी के नहीं, मेरे भक्त। और गुरु महाराज वो काम करते हैं और हमें कृष्ण के भक्त बनाते हैं, और यदि हम कृष्ण भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं, भले ही आस्ते ही क्यों ना हो, तो समझ लो हम अपने गुरुदेव की एक्सपेक्टेशन पे उतर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, सिर्फ क्या करना है, हरि नाम का भजन करना है और चार नियमों का पालन करना है, कौन सी मुश्किल काम है। यदि आप ये कर रहे हो, मांस मछली अंडा नहीं खा रहे, किसी प्रकार का भी जुआ नहीं खेल रहे, किसी प्रकार का भी व्यभिचार नहीं कर रहे हो, और किसी प्रकार का भी नशा नहीं कर रहे हो, और हरि नाम का जप करते हो, तो और हमसे गुरु महाराज की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी तो जो हम करते हैं वो सब वॉलेंटरली अपनी तरफ से करते हैं, ये गुरु महाराज की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो हम करना चाहें वो वॉलंटरली हमारा भाव होता है कि हम अपने गुरु की सेवा करें, हम कृष्ण की सेवा करें, ये हमारा भाव है। जैसे आलोक सदन एक दिन अचानक किसी बात से बात चली और सोचा ऊपर गुरु महाराज के घर है, उसका जीर्ण उद्धार करते हैं, ये तो हमारा भाव है। ऐसे थोड़ी कि गुरुदेव ने आके कहा सपने में कि ये मेरा घर फिर से बनवा दो, उन्होंने तो नहीं कहा। और अगर वो कहे और हम करें तो फिर कमाल किस बात का, वो कहे और हम करें तो कमाल किस बात का, कमाल तो इस बात का है कि उन्होंने नहीं कहा और हमने करके दिखाया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव जब विदेशों में कृष्ण कथा, कृष्ण के मंदिर, कृष्ण का प्रचार और बहुत सारा कृष्ण के लिए कर रहे थे, तब मेरे गुरु महाराज के मन में आया एक दिन कि कृष्ण के लिए तो सभी कर रहे हैं, सब ही कृष्ण के लिए कर रहे हैं, पूरा आंदोलन कृष्ण के लिए कर रहा है, लेकिन जिसने हमें कृष्ण का मार्ग दिया उसके लिए तो कोई कर नहीं रहा है, और वो स्वयं करने को बोल नहीं रहे, वो तो सबको यही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण मंदिर बनाओ, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण प्रचार करो, कृष्ण के लिए ये, कृष्ण के लिए वो। तब उनके मन में आया मैं करूंगा उनके लिए। उस समय तक और किसी के मन में नहीं आया, और सबके तो मन में आया कि गुरुदेव ने कहा कृष्ण सेवा करो, सब लग गए, कोई मंदिर बना रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई गौशाला बना रहा है, कोई फार्म हाउस बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कम्युनिटी सेंटर बना रहा है। लेकिन मेरे गुरु महाराज के मन में आया कि जिसने ये सब हमें कृष्ण के रास्ते पर चलाया उसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, मैं करूंगा। उनके गुरु ने नहीं कहा था कि तुम ये करो। गुरु महाराज क्या कहते हैं? जो कृष्ण के वचन है, कृष्ण कहते भव मद भक्तो, और गुरु कहते भव कृष्ण भक्तो, बस ये गुरु की आज्ञा है। और हमारे गुरुदेव की हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है? हम टाइम पे भजन कर ले और कोई जीवन में पाप ना हो किसी प्रकार से, कृष्ण नाम का जाप हो और जीवन में ना कोई पाप, बस इतना कर लो, ये है एक्सपेक्टेशन, ये है एक्सपेक्टेशन। बाकी तो जो हम करते हैं वो तो हमारा भाव होता, हम सोना चांदी हीरे मोती जो करें वो हमारा भाव है, उनकी तरफ से कोई आज्ञा नहीं है। उनकी तरफ से तो एक ही आज्ञा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, उनका यही की अर्थ है बैक टू होम बैक टू गॉड, ईश्वर की ओर अपने घर की ओर। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है कि हम अपने गुरु महाराज की कोई एक्सपेक्टेशन पूरी करने, उनकी है ही नहीं तो पूरी क्या करोगे? उनकी तो एक ही है, हरि नाम जप करो और कृष्ण भक्ति के जो सिद्धांत चलते रहो, बस। और उनकी कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज के जीवन का यही लक्ष्य है, आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस। शिष्य का भाव है वो अपने गुरु के लिए जमीन आसमान एक कर दे, ये वॉलेंटरली है, बाय फोर्स नहीं। ठीक है जी, और कुछ?
हरे कृष्ण बापू जी, अगर जाने अनजाने में गलत क्वेश्चन पूछ रहे तो आई एम सॉरी। बापू जी, आपको नहीं लगता कि कृष्ण को पहचानना हमसे हर व्यक्ति में कृष्ण को देखने का हक, हमारा जो हक है उसे कम कर देता है? क्योंकि मतलब लेट्स अंडरस्टैंड हाउ, तो एक तरफ है कृष्ण को पहचानना, विच मीन्स कि जब हम मुश्किल की घड़ी में हो या हमें किस चीज की जरूरत है तब कृष्ण किसी के माध्यम से आते हैं और हम उसे पहचान लेते हैं। दूसरी तरफ है कृष्ण को देखना, मतलब हर उस खूबसूरत चीज या एक्ट ऑफ काइंडनेस या कला या मुस्कुराहट में या किसी की अच्छाई में कृष्ण को देखना। तो पहचानना जो है वो एक कुछ मिनटों का प्रोसेस है जिसके वजह से हम कृष्ण को 24 आवर्स देखने के प्रोसेस को मिस कर जाते हैं। और पहचानना आई बिलीव कि इज अ सेल्फ सेंटर एंड नार्सिसिस्टिक वे ऑफ रियलाइजिंग कृष्ण। पहचानना सिर्फ मेरे तक और मेरे ही लाइफ के एक्सपीरियंस तक सीमित है, जबकि कृष्ण को देखना एक ब्रॉडर कैटेगरी है, और क्योंकि वो सबको मध्य नजर रखते हुए इम्प्लाई किया जा सकता है सबके लाइफ के मिराकल्स में उसमें कृष्ण को देखना।
तो बेटा पहचानोगी कब? जब देखोगी तब ना, देखे भी ना भाई, हम पहचाने भी इससे भाई, ये क्या है, ये आपने पहचाना नहीं पहचाना? कब पहचाना? जब देखा तब पहचाना, देखे भी नहीं कौन कैसे पहचान सकता है? भाई वहां से मैं आया तो पहले आपने मुझे देखा या पहचाना? देखा। अह तो देखे बिना कोई पहचान कैसे सकता है? तो पहले तो हमें देखना है। क्या देखना है? चौथे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, चौथे में कौन से में? एक कुत्ते में। पांचवा अध्याय, पांचवा अध्याय एक कुत्ते में, एक हाथी में, गाय में, चंडाल में और ब्राह्मण में, विद्वान व्यक्ति सब में ईश्वर देखता है। बात पहले आई देखने की, जैसे उधार दो, ये दो चीजें हैं, क्या है ये? क्या है ये? क्या है? ढक्कन। तो आपको कैसे पता पड़ा? पहले देखा, देखा है पहली बार। पहले देखते हैं फिर पहचानते हैं। देखे भी ना कोई पहचान कैसे सकता है? एक बात का क्या दिखता है, ये अपनी अपनी रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है। नरसिंह मेहता को ईश्वर दिख गया, उसके चाचा को एक अदर कास्ट का आदमी दिख गया, ये अपने अपने दृष्टि कोण पे है। भक्त नामदेव जी महाराज जब एक दिन खाने बैठे और खाते समय एक चपाती ली और सोचा चपाती पे घी लगा के खाऊं, ऐसे में कुत्ता आके चपाती को लेकर भाग गया। भक्त नामदेव जी महाराज भी उसके पीछे भागे। लोगों ने कहा अरे महाराज कुत्ता है बेचारे को खाने दो ना, क्यों भाग रहे? कहा मैं इसलिए थोड़ी भाग रहा हूं कि उसे चपाती लूं, इसलिए भाग रहा हूं कि उसको घी लगा के खिलाऊं, क्योंकि उसने उसमें भी ईश्वर का अनुभव किया। ईश्वर हर बात में थोड़ी, परम ईश्वर को ईश्वर सर्व भूतानाम, मेरा हरि सब में है, मेरा हरि सब में। अच्छा अब उसने हमें बता भी तो दिया है। देखो एक बात बताऊं, मैं कहूं कि देखो सुनो मैं सुबह जाऊंगा वॉक पे और मैंने ये धोती कुर्ता नहीं पहन रखा होगा, मेरी टी शर्ट और ट्रैक सूट पहना होगा, तो मैंने बता दिया ना। और जैसे ही आप देखोगे, अब देखो सातवां अध्याय पे आओ, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं पानी का शुद्ध स्वाद हूं। अगर हमारी रियलाइजेशन है इस श्लोक के अनुसार, तो जैसे हम पानी पीते, देखो मैं पी रहा हूं, हमें सोचना चाहिए ये मेरी जबान पे जिसने एक शीतलता का आनंद दिया, ही इज कृष्ण। ये आपकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। कल बरसात हुई पहली, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आई और मेरा ठाकुर कहता है क्या, मैं पृथ्वी की आद सुगंध हूं। वाओ, ये आप वाओ किसका अनुभव कर रहे हैं? कृष्ण का। कैसे? खुद बताया, ऐसा हो तो समझ लेना मैं हूं, ऐसा हो तो समझ लेना मैं, और ऐसा ना हो तो समझ लेना मैं नहीं। अब ये सब चीजें कब रियलाइज होगी? जब कहीं से हमने सीखी होगी, जब कहीं रियलाइजेशन की हमने प्रैक्टिस की होगी। भाई सुनो, एक डॉक्टर पेशेंट को देखते ही उसके सिम्टम्स से समझ जाता है इसको क्या है। भाई बोलो ना इसको क्या? भाई उसके सिम्टम से पता पड़ जाता है इसको बुखार है। अब बुखार है कैसे? उसने ये सब चीजों की प्रैक्टिस की थी। पढ़ा था। किससे? अपने प्रोफेसर से। ऐसे जब शिष्य अपने गुरुदेव से सुनता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है, तब उसको रियलाइजेशन होती है। ऐसे ही आप खामखाई बिना रियलाइजेशन के ये चीज समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा, अब चार लोगों की बॉडी गर्म है, मतलब चारों को, लेकिन वो डॉक्टर समझता है इसको डेंगू है, इसको मलेरिया है, इसको टाइफाइड है, इसको चिकनगुनिया है। बॉडी तो चारों की गर्म है, लेकिन चारों के सिम्टम से समझ गया इसको ये बुखार है, इसको ये बुखार है, इसको ये बुखार है, इसको ये बुखार है, क्योंकि ये उसकी प्रैक्टिस है। ऐसे जब हम हरि कथा में आते हैं, जैसे सब बहने, सब माताएं, सब वैष्णव उपस्थित है और ये सुन रहे हैं, अब जाहिर बातें सुनते 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 जब इनको ये रियलाइजेशन आ जाएगी, क्या रियलाइजेशन आएगी, अब सुनो दो मिनट में। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं सुनो। श्री भगवान ने कहा भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, क्योंकि 10वां 11वां तो है, तेषाम एव अनुकंपा क्या। श्री भगवान ने कहा अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, चूंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, मेरा जो ऐश्वर्य है उसकी कोई सीमा तो है नहीं, अनलिमिटेड ग्लोरिफिकेशन है कृष्ण की, अनलिमिटेड वैभव है, असीमित ऐश्वर्य है। लेकिन मैं तुम्हें मुख्य मुख्य बता देता हूं, क्यों बता देता हूं, देखो सुनो, मैंने ये बता दिया कि ये क्या है, ढक्कन। अब जब भी ये आपके सामने आएगा क्या समझोगे, ढक्कन है, क्योंकि बताया गया ऐसे। अब कृष्ण बता रहे हैं सुनो, हे अर्जुन 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तंत्र अंत हूं। कौन कह रहा है? अर्थात ये जो हम सब बैठे हैं, हम सबों के अंदर कृष्ण है। अब कृष्ण किस रूप में? परमात्मा के रूप। कृष्ण कृष्ण के रूप में नहीं है, ध्यान देना, यह स्पेसिफिकेशन कर दिया है, मैं समस्त जीवों में परमात्मा हूं, अर्थात परमात्मा चतुर्भुज रूप में सब है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है जो बिना कृष्ण के हो, बिना ईश्वर के हो, बिना परमात्मा के हो। 20 खिलौने हैं मेरे सामने, कितने? हाथी, बचपन में इसे मेरी मां लेकर देती थी, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, स्कूटर है, टॉर्च है, गुड़िया है, वो सब डिंग 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 करते, कोई उछलता है, कोई चुलता है, कोई बू बू करता है, उन सबों में एक चीज कॉमन है, बैटरी सेल है ना। बिल्ली यदि उछल रही है तो किसके माध्यम से? सेल बैटरी के माध्यम से। कुत्ता यदि दुम हिला रहा है तो किसके माध्यम से? उस बैटरी के माध्यम से। गुड़िया यदि यूं यूं हिल रही है तो किसके माध्यम से? उस बैटरी स्कूटर बर्र आवाज निकाली तो किसके माध्यम से? और टॉर्च में से रोशनी आ रही तो किसके माध्यम से? उन सबों में एक कॉमन फैक्टर है, सबों में क्या है? बैटरी सेल है। ऐसे हम कोई गा रहा है, गाता रहे मेरा दिल, कोई सुन रहा है, सुन साहिबा सुन, कोई देख रहा है, देखा जब से तुमको, कोई हंस रहा है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और रो रहा है, रोना क्या है? रोना कभी ना रोना, चाहे टूट जाए तेरा खिलौना, मेरा क्यों टूटे भाई? तो ये जो सब हंसना है, गाना है, रोना है, सुनना है, देखना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे उन खिलौनों में वो बैटरी सेल था, ऐसे हम सबों में कृष्ण है। बिना कृष्ण के कोई हिल भी नहीं सकता, बिना कृष्ण के कोई देख नहीं सकता, बिना कृष्ण के कोई बोल नहीं सकता। ये मैं नहीं, भगवद गीता 10वां अध्याय और 20वां श्लोक कह रहा है, 20वां श्लोक कह रहा है। अब ये तो पहला सिम्टम दे दिया कि बच्चों, जिसे जिसको ज्ञान नहीं है वो तो कुछ और ही समझेगा। जैसे किसी जमाने में नया नया रेडियो आया, वो रेडियो खराब हो गया, रेडियो खराब हो गया तो रेडियो की दुकान पे गए, गांव का आदमी था, रेडियो बनाने वाले के पास गया, तो रेडियो वाले ने कहा रुको मैं देख लेता हूँ सामने सामने क्या प्रॉब्लम है देखो। तो रेडियो वाले ने रेडियो खोला तो उसमें से एक कॉकरोच मरा हुआ निकला। क्या निकला? गांव वाले ने बोला अरे मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, जो इसमें गाना गाता था वही मर गया है, इसमें से कहां से आवाज आएगी? उसको लगा कि एक कॉकरोच अंदर गाना गा रहा था, तो उसकी बुद्धि इतनी थी। फिर एक और आदमी समझाना चाहता हूं, एक गांव के चौधरी साहब थे लेकिन पढ़े लिखे थे नहीं, बस पैसा आ गया हेलीकॉप्टर ले लिया, हेलीकॉप्टर ले लिया, आधा पौना घंटा यानी 10-15-20 मिनट ऊपर चला और गिर गया, हेलीकॉप्टर गिर गया, लेकिन किसी तरह से खेतों में गिरा तो चौधरी साहब बच गए। जैसे हमारे नेता को कभी कभी हेलीकॉप्टर गिरता और बच जाते हैं, ऐसे वो बच गए। गांव वालों ने कहा चौधरी साहब हुआ क्या? अरे बोला क्या होना था, नया नया थोड़ा हेलीकॉप्टर मैंने चलाना सीख ली, तो बोला उड़ने को तो उड़ गया, फिर बोला वहां मुझे ठंड लगने लगी, बहुत ठंड लगी, तो मैंने बोला ठंड कहां से आती, मैं भी पागल था, इतना बड़ा पंखा चल रहा था ठंड तो लगेगी, तो बोला मैंने पंखा बंद कर दिया। इसी तरह से जब तक हमें वास्तविकता का पता नहीं है हम भटकते रहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानाम सब में कृष्ण है, ये पहला सिम्टम। आप ही बोले, आप बुलावे, आप करे हू हू, आप बोले आप बुलावे आप करे हू हू, आप ही बोल रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूं कौन मुझसे बुलवा रहा है? अगर मेरा ठाकुर मुझसे निकल जाए अभी, आप बोलोगे डेड, मृत्यु हो गई, जबकि मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरे बाल, मेरे नाक, मेरे कान वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप कहोगे मर गया। क्यों? वो ईश्वर मेरा चला गया उसमें, ईश्वर का अंश चला गया उसमें। तो जीव और कृष्ण एट ए टाइम हम सबों में दोनों है। कठोपनिषद कहता है एक दो तोते हैं, एक खा रहा है और दूसरा देख रहा है, खा रहे हैं वो हम जीव हैं जो फंसे हैं, साक्षी भाव से ईश्वर देख रहा है कि कब मेरी ओर वापस आ जाएंगे, वो इंतजार कर रहा है, इसलिए टिकटिकी बांधे देख रहे हैं। अब एक सिम्टम ये, आगे चलो, अब स्टार्ट कर रहे हैं कहां कहां, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, इसलिए देखो अब ये पढ़ा कि तेजस्वी सूर्य कौन हूं, मैं हूं, तो आप सूरज को देखोगे कौन याद आएगा, कृष्ण याद आएगा, आएगा क्योंकि ये आपने सुना है। फिर आगे मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा, अब चंद्रमा को देखोगे क्या होगा, याद आएगा ना, इसलिए कहा जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए। लेकिन याद रख रहे ये सारे सिम्टम है किसके, ये सारे कृष्ण के सिम्टम है, रोज हमें कृष्ण मिलते हैं। लो आज मैं फिर कहता हूं, जब मैं पानी पीता हूं कृष्ण मुझसे मिलता है, क्यों, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, पानी का मैं स्वाद हूं, तो जब मुझे पानी पीता हूं और स्वाद आता है मुझे लगता है वाह कृष्ण तुम आए, कहते हैं स्वाद आया, अब स्वाद की जगह आप कह दो कृष्ण आया, पढ़ लो गीता, ऐसे रियलाइज करेंगे ना तो पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। हम जरूरी नहीं है कि माला हो तभी कृष्ण को याद कर सके, अगर ये भगवद गीता का सातवां और दसवां अध्याय ठीक से समझ आ गया तो हर जगह भजन है, हर जगह भजन है, हर वस्तु में भजन है, जिधर देखूं तेरी सुब्रत, ये रियलाइजेशन जब हो गया ना तो जीवन धन्य हो गया। नित्य भजो, ये लेकिन जो मैंने कहा है थोड़ा सा भगवद गीता का सातवां और दसवां अध्याय थोड़ा घर पे जाके पढ़ लेना, फिर इस पे मैं फिर चर्चा करना चाहता हूँ। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय जय।